भागवत में पहला जो स्कंद का पहला अध्याय है उसका शीर्षक है क्वेश्चंस बाय द सेजेस। नैमिषारण्य में जो ऋषिगण एकत्रित हुए थे उन लोगों का प्रश्न, और प्रभुपाद बताते हैं कि दूसरे अध्याय की शुरुआत में तो इस प्रकार से ऋषियों ने, श्रवणकादि ऋषियों ने उत गोस्वामी से उनको योग्य व्यक्ति मानकर उनके अंदर परंपरा के सद्गुरु की परंपरा के लक्षणों को देखकर कैसे उनको संपूर्ण वेद इतिहास पुराण इत्यादि को पूर्ण के शास्त्रों का सार मालूम है और बड़े नम्र हैं और उन्होंने अपनी गुरु की कृपा प्राप्त की है और ऐसे योग्य व्यक्ति मानकर उनको चुना और उनके सामने उन्होंने 6 प्रश्न रखा। और ये 6 प्रश्न जो है वो पहला अध्याय, अलग अलग जो 6 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न एकांतता श्रेय, सबसे एकांत मतलब एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड। एब्सोल्यूट मतलब सब लोगों के लिए भलाई, ऐसा नहीं कि हमारे लिए अच्छा है वैसा, सब लोगों के लिए क्या भलाई है और सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे मतलब सबके लिए जो भलाई वो क्या है। इस तरह से 6 प्रश्न पूछते हैं। और एक्चुअली ये दूसरा और तीसरा अध्याय जो है वो सूत गोस्वामी का ये 6 प्रश्न का उत्तर है। तो आज हम दूसरा प्रश्न के ऊपर संक्षिप्त रूप से थोड़ा चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या था और उसका उत्तर क्या था, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो पहला प्रश्न श्रवणकादि ऋषियों का था कि तत्र तत्रांजसा युष्मत् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसाम् एकांततः श्रेयः तन्न शंसितुमर्हसि। पुंसाम् एकांततः श्रेयः, आपने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है और बहुत हमने उन्हें आशीर्वाद दिया है, बहुत साल जीवित रहेंगे, तो अब आप बहुत ही सरल भाषा में सब लोग समझ पाए ये समझाइए कि क्या आपने निष्कर्ष, आपके निष्कर्ष में एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड। एब्सोल्यूट का मतलब समझ लीजिए कुछ लोगों के लिए कुछ चीज भलाई है पर वही दूसरों के लिए भलाई नहीं। उदाहरण के लिए किताब कोर्स में उदाहरण देते कि किसी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसका बुराई हो गया, गाड़ी अगर थोड़ा डेंट हो गया पर मैकेनिक के लिए भलाई हो गया उसको, तो चाहिए ज्यादा ऐसा होते रहे तो उसका भी खाना पीना चलता रहे, या हम कोई बीमार हो गए तो हमारे लिए डॉक्टर के लिए अच्छा है उसकी भलाई हो गई। तो भौतिक संसार में एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा है, दूसरे के लिए अच्छा है तीसरे के लिए बुरा है। पर एकांततः मतलब ऐसा चीज जो हरेक जीव के लिए उमसाम एकांत था, हरेक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है, एब्सोल्यूट गुड, गुड फॉर ऑल पीपल एट ऑल टाइम अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। और दूसरा अल्टीमेट, थोड़े समय के लिए या कुछ स्तर के लिए भले ऐसा नहीं, सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, तो सबसे उच्चतम और सबको लागू होने वाला आपने क्या निष्कर्ष किया तुम वो हमको बताइए बस। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगले श्लोक में बोलते हैं क्यों ऐसा पूछ रहे, प्रायण अल्पा इस सत्य कला जना मंदा सुमंद मत मंद भाग्य है उपद्रव। तो इसके उत्तर में, पहले प्रश्न के उत्तर में शुद्ध गोस्वामी ने यहां से शुरू किया 6 श्लोक से। पहले उन्हें साधु पृष्ठो हम भगवत गिर लोक मंगल, पहले उसको कंग्रेचुलेट करते हैं, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अच्छा प्रश्न मतलब क्या, अच्छा प्रश्न मतलब उसमें तीन चीज होना चाहिए तब वो अच्छा प्रश्न है। मुने साधु पृष्ठो हम, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्यों भवद्भिर लोकमंगल, कि आपके प्रश्न का जो उत्तर है इसमें सब पूरे लोगों का मंगल होगा इसमें, क्यों यद कृता कृष्ण संप्रश्न, क्योंकि ये कृष्ण के संबंध में आपने प्रश्न पूछा है। रूपा जी का एक पुस्तक है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, क्यों क्योंकि वो प्रश्न भी जो थे बाप को हैं जिन्होंने पूछा बहुत सिंसियर थे, वो जीवन की परिपूर्णता क्या है वो जानना चाहते हैं, उसके संबंध में पूछ रहे हैं और उनका उत्तर भी जो है वो कृष्ण के संबंध में। तो यद कृता कृष्ण सम प्रश्न, और तीसरे क्यों सबसे अच्छा प्रश्न है ये, हीनात्मा सुप्रसिद्ध, इसके उत्तर जो भी सुनेगा पूर्ण रूप से वो तृप्त हो जाएगा, आत्मा उसकी तृप्त हो जाएगी। आत्मा तृप्त हुई उसका सबूत क्या है, कि जिसके आत्मा तृप्त हो गई उसके बदले में पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा चीज बोलेगा जैसे वो जो है वो मुझे दे दो और ये इसके बदले में ये ले लो, तो बोलेगा मैंने, इसका मतलब तृप्त है। अगर हम खा लिए बहुत खा लिए पेट भर गया गले तक आ गया पूरा, उसके बाद बोलेंगे और कुछ चाहिए, बेस्ट चीज भी ला के दे दो सामने, बोला अभी हो गया बस खाता और मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूं एकदम नहीं चाहिए। तो ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तो बोले ऐसा एक चीज बताओ जिसको करने से जिस ऐसा गुड ऑक्यूपेशन, मतलब ऐसा क्या चीज है जिसके करने से जीव सबसे भला और सबसे श्रेय ऊंचा चीज कर पाएगा, तो उसको उसके उत्तर में यहां से वो शुरू करते हैं। पहले पहले तो धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और फिर सवाई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैत की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, ये उसका उत्तर शुरू किया हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। सवाई पुंसाम, सवाई पुंसाम मतलब हरेक मनुष्य के लिए, कोई जात का क्यों ना हो, कोई रंग का क्यों ना हो, तो सबके लिए सवाई पुंसाम परो धर्म, दो प्रकार के धर्म होते अपराधर्म और पराधर्म। अपराधर्म मतलब शरीर से संबंधित परियमित स्पर्धा, और दूसरे पराधर्म परोधर्म मतलब जो आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से। सवाई पुंसाम परोधर्म यतो भक्ति, तो भक्ति है भगवान की जो भक्ति, और किसके प्रति, देशभक्ति या दूसरे कोई भक्ति, ऐसा देवताओं के प्रति भक्ति नहीं, ये तो भक्ति अधोक्षज अध अक्षज, अक्षज मतलब जो आंखों के सामने प्रकट हो सकता है, पर अधोक्षज मतलब जितना भी आप कुछ कर लो जबकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी वो आपको आंखों के सामने जबरदस्ती नहीं आएंगे, अधोक्षज अध मतलब डिफीट, डिफीट ऑल योर एंडेवर टू सी पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, कितना भी आप कोशिश करो मुनि पुंगवानम, सबसे श्रेष्ठ मुनि अगर कहीं भी जबरदस्ती जाने की कोशिश करे फिर भी यत प्रपद सीमनि अविचिन्त्य तत्, भगवान के चरण कमल के जो अंग की जो चरण के नाखून है उसका जो कांति है वो भी देख नहीं पाएगा, तो नहीं पहुंच पाएगा, पर वो अगर देखना चाहे तो दूसरी बात, भगवान देखना चाहे तो दूसरी बात। तो यतो भक्ति अधोक्ष दे, और ये भक्ति इसमें दो प्रकार दो लक्षण होनी चाहिए, अहैतुकी और अप्रतिहत, और जब ये करता है जिस हद तक वो अहेतुकी है, भक्ति करने के बदले में कोई हेतु नहीं है, बस भगवान को प्रसन्न करना भगवान को तृप्त करना, अगर यही हमारा है तो यह आत्मा, और अह अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब भौतिक संसार की किसी स्थिति में वो रुकता नहीं है भक्ति, ऐसी भक्ति जो है यह आत्मा सुप्रसिद्ध होती है, और उसको बहुत अलग अलग तरह से समझाते हैं, लोग समझते हैं कि नहीं भक्ति मतलब भावुकता, नहीं बोलते वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजन जनयति आस वैराग्यम ज्ञानम चाहिए तो है तो कम, सच्चा वैराग्य सच्चा ज्ञान अपने आप आ जाएगा जो भगवान की भक्ति करेगा, इस तरह से। और वो धर्म कैसा पता, एक है उस धर्म के पालन करने से ज्ञान, सच्चा ज्ञान और सच्चा वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य मतलब जो भी भगवान के भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको, उसे कोई दिलचस्पी नहीं, और जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हम लोग स्वीकार करें। तो अपने आप ज्ञान, सबसे बड़ी तपस्या वही है। एक्चुअली यही प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न बाद में। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब यहां ऋषिगण डायरेक्टली बता रहे हैं ऐसा चीज है, मतलब इतना सरल से हमको दे दिए हैं भागवतम, एकदम सिंपल करके दे दिया गया है। और सो जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चेत अहित। सच्चा वैराग्य मतलब क्या, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई आदमी जा रहा है, उसका पैसा गिरा हुआ सामने रोड के ऊपर, 5,000 रुपए का एक बंडल गिरा हुआ, तो पहला व्यक्ति आएगा और कहेगा कोई नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो ठीक है मेरा। फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स स्वीपर्स, इसको मिला रखेगा। दूसरा आया था, देखता है कि नहीं आसपास कोई दिख नहीं रहा है, बहुत पैसा है पर मेरा नहीं है, मैं नहीं छूंगा, चला। तीसरा आता है, बोलता है कि किसी का पैसा है पर आसपास में कोई दिख नहीं रहा, वो बटुआ खोलता है, फिर एड्रेस देखता है किसका, उसको जाके लौटा था। बात करके तीसरा जो है, पहला जो है वो भोगी है, देखा भगवान नहीं दिख रहे और बहुत बड़ा सब प्रॉपर्टी सब दिख रहा है, सृष्टि में बहुत सारी प्रकृति की सारी सुंदरता है, आसपास देख रहे भगवान नहीं दिख नहीं रहा है, कोई मतलब इसका मालिक कोई दिख नहीं रहा है, तो अपना झंडा गाड़ देगा वो, बस दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू, एक बोर्ड लगा देगा, खत्म, फेंसिंग कर देगा उसको, खत्म, ये मेरा देश मेरा गांव, जो भी। तो एक भोगी, भोगी मतलब जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि दिखता नहीं है भगवान, अधोक्ष जन बोला अरे प्रॉपर्टी इतना है, कोई है ही नहीं दिखने, चिल्लाता है दो बार कोई सुनता ही नहीं है, गाड़ दिया भोगी। दूसरा है, कहता है कि नहीं मैंने तो सृष्टि नहीं की सबका, और कोई है ही नहीं, ठीक है मेरे को उसे लेने देना, मैं तो हिमालय जाऊंगा, वो त्यागी। और तीसरा है, कहता है कि हाँ मेरा भी नहीं है पर किसी ने तो बनाया होगा, तो किस चीज के बनाया है? उसका एड्रेस देखता है, वो एड्रेस भगवत गीता में, अहम सर्व से प्रभु भक्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा वजन्ते मां बुधा, इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझता है मेरे सब कुछ आया है, तो गीता में एड्रेस देखता है फिर वो लौटा देता है, सर्वधर्मांतरित मां में कम शरण, प्रभु आपका ये आपको लौटा रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, कमीशन उसको मिलेगा निश्चित रूप से, कोई चिंता नहीं। योगक्षेम महाम्यहम अनन्यास चिंतयन्तो महाम, ये जना परिपासते, हमेशा उनकी सेवा में लगा रहता है, क्योंकि हमारी चिंता भगवान को प्रसन्न करने में है, तो भगवान की चिंता हमको ठीक ठाक रखने में। योगक्षेम महाम्यहम, जो है उसे रखते हैं और जो नहीं है वो खुद अपने सप्लाई करते हैं, उनको मालूम है क्या नहीं है इसके पास, क्या चाहिए भक्ति में लगे रहने के लिए, वो देंगे, हमको सोचने की जरूरत नहीं, ये नहीं तो भक्ति कैसा करेंगे, कम कैसा होगा। तो ये सच्चा वैराग्य, तो समझना कि मेरा नहीं है पर हर एक का क्या चीज उपयोग है और उस उपयोग में लगाना। तो फिर दूसरा, ये धर्म सही में भक्ति, तो इसके द्वारा पता लगता है कि लोगों की गलत भावना है, भक्ति मतलब सिर्फ भावुकता, ये स्त्रियों के लिए और जिनको बुद्धि नहीं है ऐसे लोगों के लिए थोड़ा बस पूजा वूजा पाठ करने का 10 मिनट शुरू कर देंगे, पर नहीं, कृपा इसमें लिखते हैं इट इज इजी एंड सबलाइम, इट इज इजी फॉर द नियोफाइट्स एंड इट इज सबलाइम फॉर द मोस्ट एडवांस। एक बच्चा भी हरिनाम संकीर्तन कर सकता है, भगवान का सेवा कर सकता है, पत्रम पुष्पम फलम तो है, एक बच्चा एक एकदम नवसुखिया जो भक्त है वो भी आसानी से नवधा भक्ति कर सकता है, श्रवणम कीर्तन बैठ के सुन सकता है आराम से, कीर्तन कर सकता है, कीर्तन में सब लोग भाग लेते हैं वो कर सकता है, और जो परम परमहंस भक्त हैं उनके लिए वही चीज इतने मग्न हो जाते हैं वो लोग, उसमें इतना दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो एकदम सिंपल भी है पर साइमल्टेनियसली एकदम गहरी चीज भी है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अरे ये दो नाम में कृष्ण और न, ये दो इसमें आपने इतना अमृत भर रखा है कि मेरे को लगता है कि मेरे को लाखों कान और लाखों जिगवा हो ताकि मैं पूर्ण इसका आनंद कर सकूं। हमको नहीं है पर फिर भी आसान है हमारे लिए, बस माला जपना। वो लोग भी वही कर रहे हैं, बाहरी रूप से दोनों वही कर रहे हैं, कृष्ण जप रहे हम भी जप रहे हैं। हमारे लिए सरल है पर उनके लिए वो डायरेक्टली अभिन्नत्वात् नामानामिनः, डायरेक्टली भगवान का उनका अनुभव हो रहा है। तो दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है, हरे कृष्ण जपो और सदा प्रसन्न रहो कहते हैं, पर दिस इज सिंपल येट वेरी सबलाइन, बहुत ही मतलब गहरी चीज है ऐसे मंत्र। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये ज्ञानी लोगों के लिए इतना सिंपल चीज कैसे हो सकता है। इसके अंदर सब कुछ है, सबसे बड़ा तपस्या भी यही है एक्चुअली, सबसे बड़ा तपस्या ये है। शारीरिक तपस्या करना आसान है, शारीरिक तपस्या कोई भी कर सकता है, मानसिक रूप से मानसिक प्रकार का जो तपस्या है सहन करना, शीतोष्ण सुख दुख का वो भी सहन कर सकता है कोई। शारीरिक तपस्या तो लोग भी करते हैं, बाहर के लोग भी हम देखते हैं करते हैं तपस्या, शारीरिक तपस्या हमसे ज्यादा भक्तों से कई गुना ज्यादा वो करते हैं तपस्या। मानसिक तपस्या सहन करना बड़े बड़े योगी लोग भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी तपस्या है अहंकार। और ये सब तपस्या जो है वो अहंकार को बढ़ा देता है कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, ये लोग सब देखो कैसे खा रहे हैं, मैं पूरा फास्टिंग। तो कभी कभी स्वाभाविक है जो तपस्वी लोग होते हैं इतना तपस्या करते हैं ना कि उनका जो, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक कैसेट देख रहा था एक योगी का, वो तो कहता है कि ऐसा योग करोगे तो आपको खाने की जरूरत नहीं, मैं तो खाता ही नहीं हूं, बस कभी कभी खाता हूं बीच में, कभी कभी बस लगा तो थोड़ा, ये तो हवा खा के जी सकता आदमी बोलते हो, प्राणायाम हवा खाना बस, मतलब कभी बोलते हैं क्या खाना हवा खा रहा बोलते मैं हवा खा के जीता हूं। कुछ लोग योगी लोग हैं हिमालय में जो आप लोगों को लगता है कि क्या खाता है इधर, बर्फ तो ढक जाता है 6 महीने, तो खाता क्या होगा ये, उधर प्राण जो जैसा हिरण्यकशिपु ने किया था अपने हाल के रख दिया था, तो चींटी ने उसका मांस भी खा लिया फिर भी जीवित था वो, तो ऐसे लोग भी रह सकते हैं, सिर्फ हड्डी जो है वो भी रख सकता है। तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि बिना खाए रहना कोई बड़ी बात नहीं, पर इन लोगों को इतना अहंकार हो जाता है, अगर दूसरा आके देखते हैं समाज में लोग सब ऐसे खा रहे हैं कितने, तो ये बता रहा था कि धीरे धीरे उनको लगने लगता है, और लोगों को नियंत्रण करते हैं, लोगों का मन को नियंत्रण कर सकते हैं, लोगों के जीवन को नियंत्रण कर सकते हैं, तो धीरे धीरे अहंकार बढ़ता है कि मैं एक्चुअली नियंत्रण करता हूं, मैं प्रभु। पर तपस्या का विपरीत असर हो गया, इसीलिए भगवान कहते हैं ना हम वेदे न तपसा न दाने न चाहिए, इन चीजों से मैं प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। सबसे बड़ा तपस्या है अपने अहंकार को, क्योंकि भौतिक संसार में आए कि अहंकार रूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मेन चीज जो है वो अहंकार, और वो अहंकार नहीं जब तक है तब तक आदमी इस भौतिक संसार में रहेगा, वही एक चेन है जो बांध के रखा है आदमी, बंधन मेन बंधन है अहंकार, ये जो है जेल है, भौतिक शरीर है एक जेल है, जेल के अंदर ही आत्मा को डाल के रखा गया, ताला मार के रखा, उसमें से निकल नहीं सकते, निकलेंगे तो भी अगला तैयार है अगले से तथा तो देहांत तरफ प्राप्ति और जिला के उन्होंने ये नहीं तो ठीक है, यहां से ट्रांसफर किया तो दूसरे जेल में घुसाया, और पता नहीं वो 84 लाख में कौन कौन से जेल में डाल करें। तो इसको जो तोड़ना तभी होगा, स्थूल शरीर जो है सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ, सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा से बांधा गया, और सूक्ष्म शरीर का जो लास्ट कनेक्शन है वो अहंकार, वो आत्मा को कनेक्शन किया रखा है। तो उस अहंकार को ये करना मतलब नष्ट करना सबसे बड़ी तपस्या है। इसीलिए कल आज या कल क्रिसमस मनाए, जीसस क्राइस्ट का कहना था ओनली द हम्बल शल अटेन द किंगडम ऑफ गॉड, जो नम्र होगा वही भगवत धाम को प्राप्त करेगा। 13वें अध्याय में भगवत गीता में 8 से 12 जो है श्लोक नंबर, उसमें 20 आइटम बताते हैं। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तद् अन्यथा, ये 20 लक्षण जो ये ज्ञान है इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो ज्ञान का पहला लक्षण क्या है? अमानित्व, अमानित्व अदम्भित्व। तो अमा मतलब नम्रता, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा, कीर्तनीय सदा अगर करना है तो प्रणादपि सुनते करो जैसे सुन। तो मेन चीज वो है तपस्या। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। सबसे बड़ी तपस्या है भगवान का गुणगान करना, क्योंकि अहंकार के कारण हरेक व्यक्ति अपना गुणगान करता है, अपने चीजों का गुणगान करता है, भगवान को गुणगान नहीं करता। और भगवान को गुणगान करना मतलब समझना कि मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं और भगवान महान। टीजीएस प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो बोले मैं तो हिंदी समझता नहीं था प्रभुपाद से जब मिला, पर वो दिल्ली में रहते थे। प्रभुपाद जी जब वहां आए पहले तो दिल्ली से ट्रेन में चढ़े, टीजीएस प्रभु भी चढ़ गए दिल्ली में, और दिल्ली से मथुरा की ओर जा रहे थे। एकाएक प्रभुपाद ने बोला दिल्ली में कोई सेंटर ही नहीं है हमारा, बोले काम करो तुम टेंपल प्रेसिडेंट बन जाओ, उतरो। उतार दिए उनको सब लगेज में, उतरो बोलो तुम दिल्ली में टेंपल बनाओ, टेंपल नहीं था प्रेसिडेंट वो टेंपल प्रेसिडेंट, बोले तुम यार टेंपल प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, और उनको उतार दिए उधर प्लेटफॉर्म में ऊपर। उनको नहीं मालूम पूरा दिल्ली, बोले यहाँ एक सेंटर बनाओ तुम वहां का टेंपल प्रेसिडेंट। तो बोले मैं सबसे पहला टेंपल प्रेसिडेंट था जहां टेंपल ही नहीं था। तो वो बोल रहे थे, तेजस को बता रहे थे कि प्रभुपाद जी दो बहुत उनका लेक्चर में सुनता था हिंदी में, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, पर दो चीज मेरे को क्लियरली याद है प्रभुपाद जी बोलते थे, और वो ऐसा बोलते थे कि कोई भी सुनेगा तो समझ जाएगा। और उन्होंने बोला उसको, बोले कृष्ण महान है और हम तुच्छ है। और वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद जैसा बोलते हैं ना तुच्छ, तो मेरे को लगा कुछ तो एकदम मतलब गया गुजरा एकदम तुच्छ, मतलब इतना अच्छी नगण्य है वो। वो मेरे को समझ गया कि बहुत ही मतलब गया गुजरा एक बार शब्द है तुच्छ, बोलने से समझ में आता है कि हम कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। एक केश के अग्रभाग का 10,000 टुकड़ा का ये दिखता भी नहीं सामने, तो घास तो दिखता है कम से कम, तो दिखता भी नहीं। बोले दो ही चीज बस, भगवान महान है हम तुच्छ। बोले बस यही मेरे को दो सेंटेंस याद है हिंदी का। तो आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो फिर और कोई दूसरा तपस्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तपस्या का उद्देश्य है यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि यत अदाति, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पण। अंततः तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या है भगवान को शरण जाना, सबसे बड़ी तपस्या। हमको किसी को बोलेंगे अभी कुछ भी करो पर हरिनाम जपो, अगर भक्त नहीं है तो हरिनाम जपना 16 माला खास करके बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या होगा नहीं। पर एक भक्त के लिए कोई बड़ी तपस्या नहीं। अगर कोई एक प्रेमी और प्रेमिका दो हैं, बोले उसका नाम लेते रहना, वो तो 24 घंटा लेते रहता, कौन सी बड़ी तपस्या उसकी। वो तो कहां भी बस के पीछे में भी, सीट के पीछे में भी वही लिखता है, वो एरो मार्क डाल गया, हमेशा उसी का चिंतन। तो उसको लिए नाम जप करना या स्मरण करना कोई तपस्या नहीं। पर जिसको प्रेम नहीं है, जिसका कोई शत्रु है, उसको बोले इसका स्मरण करते रहो 24 घंटा, उसका नाम जपो, रावण को जाके बोलूंगी राम नाम जपो। सबसे बड़ी तपस्या है उसको। क्योंकि वो खुद राम बनना चाहता है। लास्ट पर्सन ही वांट्स इज समबडी कॉम्पिटिटर, क्यों लेगा। तो सबसे बड़ी तपस्या है नाम जप या भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की शरण जाप। तो वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोग, सबसे बड़ी तपस्या यही है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है। बहु नाम जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्व। ज्ञान की पराग परिपूर्णता यह है कि जानना जन्माद्य से यत कहां है, जो स्रोत है जहां से सब कुछ आ रही है। योग की परिपूर्णता यही है। योग का मतलब क्या, अंततः समाधि, और समाधि मतलब सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व ज्ञातव्यम् इति समाधि। समाधि मतलब एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन वन पॉइंट। समाधि में जो अष्टांग योगी है, समाधि किसी न किसी एक वस्तु के ऊपर पूरा ध्यान करते हैं। पर अगर भगवान के अलावा कोई एक वस्तु पर, किसी भी हो, चाहे ये पंखे के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, पूरा मन को एकाग्र करके एक ही व्यक्ति के ऊपर, एक चीज के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, इसको कहते हैं समाधि। पर कब तक कर सके, कब तक, पूरे जीवन भी किया तो पंखा भी मरने वाला है, तुम भी मरने वाला, तुम भी नष्ट होने वाले, पंखा भी नष्ट होने वाला है, तुम्हारा ध्यान भी नष्ट होने वाला अंत तक। पर अगर आत्मा भगवान के चरण में ध्यान करती है तो नेहा विक्रम नाशोस्ति, वो ध्यान की परिपूर्णता है, वो ध्यान कभी हटेगा नहीं, क्योंकि भगवान के चरण, भगवान नित्य है, हम नित्य है, और हमारा रिश्ता जो है नित्य है। वो सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन, सबसे बड़ी योग की परिपूर्णता वही है। तपस्या की परिपूर्णता भगवान की सेवा करना, ज्ञान की परिपूर्णता उनके शरण जाना। तो जो भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा योगी है, सबसे बड़ा तपस्वी है। इसीलिए भगवान कहते तपस्वी भ्यो भिको योगी, ज्ञानी भ्यो की मतो भिको, कर्मी भ्योचा भिको योगी, तस्माद योगी भवति, मतलब मदगते अंतरात्मा। तो यहाँ वही है धर्म। हाँ, और फिर कहते हैं धर्म सु अनुष्ठित पुंसा सुनुष्ठित विश्वक्सेन तथा सु यह न उत्पादयेत यदि गतिम श्रमये वही केवल। तो ये जो धर्म है, सवै पुंसाम परो धर्म, तो लोग कहेंगे कि ऐसा है कि धर्म सुनुष्ठित, मैं अपना वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सब कर रहे हैं अपना अपना धर्म सुनिश्चित है, तो मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, क्योंकि सारा जो नियम बताए गए मेरे लिए, कड़क ब्रह्मचारी का पालन कर रहा हूँ मैं, गृहस्थ का जीवन परफेक्टली आदर्श पालन कर रहा हूँ, वानप्रस्थ हूँ संन्यास में, तो धर्म सुनिश्चित है पुंसा। अंततः इसका उद्देश्य क्या है, धर्म सुनिश्चित है वर्णाश्रम जो धर्म है, धर्म का उद्देश्य क्या है। विश्वक से कथा सु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमये वही केवल। अगर ये सारा धर्म पालन करने का लक्ष्य है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रही तो फिर आपका धर्म पालन करना सब स्थूल तुषाव घाती ना, ऐसा धान के ऊपर आप मार रहे हैं जिसके अंदर दाना है ही नहीं, तो धाने को मार के उसमें से निकालते हैं, दाना निकाल लेते हैं, दाने के निकालने के बाद भूसा रहता है, वो भूसा में जितना भी मारो उस दाना नहीं निकलने वाला। बोले अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं एकदम कठोरता से, पर अगर भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, इसका मतलब श्रम ही वही केवल। जैसा हम गाड़ी चला रहे हैं और बहुत सारे ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक रूल पालन करते हैं, लाल है तो रुकते हैं, हरा है तो चलते हैं, फिर लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक में ओवर स्पीड नहीं करते, सब कुछ पालन कर रहे हैं वो। पर अगर हमें मालूम नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, सब जा रहे हैं इसीलिए हम भी जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी हॉर्न मार रहा है इसीलिए हम सामने जा रहे हैं बस, और जो व्यक्ति आया वहां घूमते हैं, तो शायद दिन के अंत में जहां से निकले वहीं पहुंचेंगे वापस, वहां राइट टर्न लिया, वो भी राइट टर्न लिया, सब पहुंचते पहुंचते फिर वापस को जहां से। इस तरह से 84 लाख जीवनों में भ्रमण करते रहेंगे धर्म का पालन करते करते करते, कभी ऊंचे कभी नीचे, पर अंततः ये सब पालन। ट्रैफिक रूल्स सरकार ने बनाया है, बनाने का उद्देश्य क्या है कि सब लोग अपने अपने लक्ष्य पे बिना एक्सीडेंट के पहुंचे। लक्ष्य को पहुंचना ये ट्रैफिक रूल्स का उद्देश्य है, बिना एक्सीडेंट के और सुरक्षित तरीके से तुम अपने अपने लक्ष्य में पहुंचो। पर अगर कोई कहता है कि नहीं, सरकार को कहता है कि मैंने परफेक्टली पालन किया तब पर लक्ष्य नहीं पहुंच पाया, तो फिर समय वही केवल सुबह पेट्रोल वेस्ट हो गया, तुम्हारा समय बर्बाद हो गया और कुछ नहीं, क्योंकि जहां से निकले वहीं पहुंचे थे। तो विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम समये वही केवल, अगर वो रति जा बढ़ नहीं रही है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति सात था निष्ठा रुचि रुचि रति मीन्स रुचि तब बढ़ेगी जब पालन करेंगे। और फिर बोलते हैं वो धर्म असली धर्म नहीं, तो हम लोग जो धर्म का पालन कर रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये सब सिर्फ एक रिचुअल खाली बाहर से ये है, या पैकेजिंग बहुत अच्छा है औपचारिक, हाँ बाहर से पैकेजिंग है, अंदर वो सब्सटेंस नहीं है कुछ। आप साबुन खरीदे, डब्बा बहुत अच्छा था, अंदर साबुन ही नहीं, बहुत अच्छा पैकिंग करके दिए, अब आपने खोल के देखी कुछ है ही नहीं उसमें तो पूजा पाठ कुछ नहीं। फिर कहते हो कैसा धर्म जो सवे कुमसाम परो धर्म हो, बोलते धर्म से ही अपवर्ग से न अर्थ अर्थाय उपकल्पते न अर्थ से धर्म का अंत से कामो लाभाय ही स्मृत, धर्म से ही अपवर्ग से पवर्ग रूपा सुना दे पवर्ग वेदिक में इतना सिस्टमेटिक है सब कुछ, कवर्ग चवर्ग टवर्ग दवर्ग पवर्ग, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी ई कुछ भी, मतलब ए के बाद बी क्यों आया, अभी आया उसने लिखा है बस पढ़ो सी डी ई कुछ, मतलब इससे उसे कुछ कनेक्शन ही नहीं है। पर आप देखेंगे वैदिक इसमें जो डिवाइड किया गया है, आप क ख ग घ ना बोली, एक ही जगह जिह्वा जो लगता है पीछे से आगे आया है, क ख ग घ न का जो है ये जो, मैं थोड़ा स्पीच थेरेपिस्ट हूं इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, इसका स्टडी मैंने किया, जिह्वा का पिछला भाग जो है क ख ग घ न, फिर थोड़ा सामने च छ ज झ ञ, फिर टा ठा ढा ढा ठा ठा ठा, फिर थोड़ा सामने त थ द ध, फिर प फ एकदम सामने प फ फ सामने दो जिह्वा ऐसे होंठ लगता है, मतलब इतना सिस्टमेटिक। अच्छा वो ऐसा वर्ग हो गया, और ऐसा भी देखेंगे जो कॉलम, कॉलम में भी डिवाइड किया गया, आवाज भी नहीं है और हवा भी नहीं, क च त त प, फिर जो है आवाज नहीं पर हवा ज्यादा है, क छ थ ठ फ, फिर थोड़ा आवाज पर हवा नहीं, ग ज ध ड ब, ग ज ध ड, आवाज भी और हवा भी, और बाद में सब नाक से ना 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 ना। मतलब परफेक्टली पीछे से आगे सब ऑर्गेनाइज किया गया, इतना फर्स्ट क्लास, और बाद में जो चिल्लर विल्लर बज गया यार अल्लाह हुआ सब पीछे मिले, ये मेन बंदा है और ये छुट्टा है सब। इस तरह से बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया। एनीवे ये थोड़ा डिविएशन होती पवर का प फ ब भ म रूपा समझाते हैं, प प मतलब परिश्रम, कितना परिश्रम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, प और फ मतलब फेन, फेन निकलते रहता है, फिर प दो दो प्रकार से बोलते हैं रूपा, एक बार व्यर्थता या कभी बोलते हैं बंधन, ये सब करने के बाद भी बंधन फंस जाते हैं, जैसा एक मकड़े का जाल है उसमें एक कीड़ा आके फंस गया, पहले तो आके चिपकता है पहले, फिर वो उसको सकता है कि नहीं निकलूंगा मैं, तो निकलने के लिए जितना वो घूमता परिश्रम करेगा उतना वो फंसते जाता है एकदम, तो बंधन। और भ ये सब करने के बाद भी हमेशा भय, हमेशा भय रहता है, कल सब कुछ चला गया तो, कल कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? हमेशा भय। और ये सब अंत में मृत्यु, समाप्त। तो ये पवर्ग है, पवर्ग तो धर्म से ही अपवर्ग से। तो ये सब जो बंधन है मृत्यु में जो अंत होता है परिश्रम से लेकर, इससे निकलने का कार्य है वो धर्म है। अगर धर्म का उद्देश्य है जो हमको इस पवर्ग से निकाले, आप बड़े अच्छे से धर्म कर रहे ताकि स्वर्ग में जाके वहां अप्सराओं के साथ भोग करे, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तो फिर ऊपर नीचे बस वो बड़े बड़े मेरीगोराउंड होता है तो उसमें कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर गया, अच्छा लगता है। बच्चे लोग को देखा मैं, जो बड़ा जाइंट व्हील होता है, पहले जब ऊपर जाते तो सब हंसते रहते, पर जब नीचे आता है तो पेट में अजीब सा लगता है, तो रोते रहते, सब रोते रहते, फिर हंसते रहते। तो जब ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, हंसते हंसते जाते फिर मध्य तिष्ठन्ति राजसा महापुरुषोः, और अधो गच्छन्ति तामसा, कभी तमोगुण में फंस के नीचे आते तो रोते रोते आते। तो इस तरह से पुनरपि जननम पुनरपि, ये अपवर्ग में फंस जाते हैं हम लोग। पर धर्म का उद्देश्य है धर्म से ही अपवर्ग से, इसमें से निकालना। न अर्थ, इसका उद्देश्य अर्थाय उपकल्पत। लोगों को लगता है ज्यादातर 90% लोगों से पूछे क्यों हम लोग धर्म कर रहे हैं। धर्म मतलब पूजा करना, कुछ अच्छे गलत चीज नहीं करना, अच्छा चीज करना। मेन उद्देश्य है अच्छा से करो तो सब अच्छा रहेगा, होगा सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश। तो ताकि सब संपत्ति आए और यही हम लोग परमानेंटली सेटल हो जाए। और परमानेंटली होने नहीं देता, लात मार के निकालता रहता है उनको, जन्म मृत्यु जरा गया। पर मूर्खतावश धर्म और अर्थ, ताकि खूब अर्थ मिले। और अर्थ क्यों, ताकि बिना अर्थ के काम वासना को कैसे तृप्त करें। बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत ही इच्छाएं, उसको तृप्त करने के लिए कुछ अर्थ तो चाहिए, और अर्थ मिला तो तृप्त कर दे। और तृप्त करके मरते हैं कि जैसी इच्छा रहती है, और भौतिक इच्छा ऐसी है उसको जितना पूर्ण करो कभी वो तृप्त नहीं होगा। रखता हुआ आगे नहीं, उसमें जितना भी डालो ईंधन और भी भड़केगा। तो त्रिवर्गी कर, तो त्रिवर्ग इसमें फंस जाते हैं। पर वो और उसमें से जो तंग आता है वो सोचता है कि इंद्रलोक में भी तकलीफ है, ब्रह्मलोक में भी तकलीफ है, उसमें से कुछ जगह नहीं है क्या, दूसरा से पड़े कुछ नहीं है क्या। वो पूछताछ करना जो है मनुष्याणाम सहस्रेषु, बहुत हजारों में से कोई एक है जो ये पूछताछ करता है पूरा तंग आ। बहुत हो गया अर्थ, बहुत हो गया काम, अभी मुक्ति, मुक्ति चाहिए इसमें से, इन चीजों में से। पर मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूप है निवर्तित, पर परफेक्ट मुक्ति वो है भक्ति। क्योंकि मुक्ति का मतलब है किन चीज से मुक्त होना, एनी अदर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में क्या बोलते हैं,
उपाधि,
उपाधि, सारे उपाधियों से मुक्त होना। अभी हम लोग बड़े बड़े उपाधि हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इंद्र हूं, मैं चंद्र हूं, मैं ब्रह्मा जी हूं, सारे उपाधि हैं पर सारे नश्वर हैं। पर हमारा, हम सबका एक ही उपाधि है, और वो उपाधि हमारा परमानेंट उपाधि है, वो हमारा ओरिजिनल उपाधि है, जीवरो स्वरूप कृष्ण रंतिदास। वो उपाधि हमसे कोई छीन नहीं सकता, और वही जो आपको तृप्त कर सकता है पूर्ण रूप से। तो धर्म से ही अपवर्ग से, तो ये सारा धर्म गोस्वामी जी यहां बता रहे हैं के सुत गोस्वामी के, धर्म जो मैं बोल रहा हूं सवय पुंसाम परो धर्म, वो धर्म है जो अपवर्ग में ले जाएगा, मतलब ये धर्म है। और यही सबसे श्रेष्ठ है, और सबके लिए यही सबसे भलाई चीज है, इससे बढ़कर और इससे अलग कोई चीज है ही नहीं। तो जब क्यों क्यों व्यक्ति अर्थ के लिए प्राप्त करते हैं काम वासना तृप्त करने के लिए, अच्छा फिर
तो सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, हम लोग काम वासना के लिए नहीं करेंगे, अर्थ के लिए, पर धर्म तो करना पड़ेगा ना। शरीर है, मन है, उसके संबंधित में परिवार है, देश है, वो धर्म करना पड़ेगा। और धर्म करेंगे, हालांकि हम भगवान के लिए कर रहे, पर फिर भी तो अर्थ मिलेगा, अर्थ संचित होगा, यहाँ काम करेंगे तो पगार मिलेगा, पैसा आएगा, और भौतिक चीजों से ये करेंगे तो मिलेगा। तो क्या किया जाए उसको, क्या उसको नहीं ले, सब कुछ छोड़ दें हम लोग? कहते हैं कामस्य ने इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता। तो जब ये हम लोग धर्म, शरीर का धर्म है, जब तक शरीर है उसके प्रति हमारा कोई धर्म है, उसको निभाना है चाहिए। जैसा गाड़ी चला रहा है आदमी, एक गाड़ी चला रहा है, यहां से मुझे समझ लीजिए बंबई जाना है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो गाड़ी चलाते वक्त दो चीज का ध्यान होना चाहिए, एक मेरा लक्ष्य और दूसरा गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं, सामने सिग्नल कौन सा है, सामने गड्ढा है कि नहीं रोड पे, हमारे पैसेंजर कौन बैठा है, उसने खाना खाया कि नहीं, गाड़ी का पहिया में टायर में हवा है कि नहीं, ये सब तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हम सिर्फ बम्बई को देख के चलाएंगे, हमको हम गाड़ी है, गाड़ी से हमको कुछ लेना भी मांग, तो हम कभी नहीं पहुंचेंगे, शायद उसके बीच में कहीं एक्सीडेंट हो जाए। तो ध्यान वहां भी होना चाहिए, पर उधर ही देखते देखते चलाएंगे तो भी नहीं होगा, या फिर वो भूल के सिर्फ गाड़ी स्मूथ चले ऐसा देखे तो भी नहीं पहुंचे, दोनों बैलेंस करना जरूरी है। तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति, हो सकता है अर्थ मिलेगा, और काम, काम मतलब इंद्रियां हैं, इंद्र तृप्ति और सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेंस सेटिस्फेक्शन, दो अलग अलग चीजें, इंद्रियों को तृप्त करना और इंद्रियों का भोग करना। इंद्रियों को तृप्त करना जरूरी है, ये साधन है, इसको तृप्त नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति, अननेसेसरी सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय भोग उसके लिए नहीं है, लाभो जीवे तयावता, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जितना जरूरी है उतना करना चाहिए। तो फिर बाकी समय, बाकी जो है वो किस लिए, जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म की, उसके अलावा और कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। तो वो धर्म जो है वो भी सनातन धर्म का अंश हो गया, हालांकि वो बाहरी रूप से लगता है कि भौतिक, बाहर के लोग भी घर गृहस्थी चला रहे हैं और भक्त लोग भी चला रहे हैं, पर अंतर ये है कि जीव से तत्व जिज्ञासा, वो सारे कर्तव्यों का केंद्र है, क्या मेरे को भगवान के ओर ले जाएगा। तो फिर जीव से तत्व जिज्ञासा, हमारा एक ही उद्देश्य, सारे धर्म जो हम लोग पालन कर रहे हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास इत्यादि का, उसका एक उद्देश्य हमेशा एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात करके और कुछ नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई कौन सा तत्व जानना। तो अगले श्लोक बताता है वदन्ति तत्त्व विदस् तत्व में ज्ञान भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द थी। तब जो तत्वदर्शी है, भगवान कहते हैं गीता में तत्वदर्शी न तद्विधि प्रणिपातेन, अगर जान लो तो तत्वदर्शी के पास जाओ, और वो तत्वदर्शी क्या बताता है कि इस परम सत्य को, तत्व को तीन स्तर पर जाना जा सकता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द थी। ब्रह्मेति मतलब सब कुछ जो है अंततः उन्हीं से आया हुआ, उन्हीं की शक्ति है। परमात्मा यदि मतलब वो ही व्यक्ति जो सर्वव्यापी है, वो हरेक के हृदय में स्थित है, और वो भी जो है विस्तृत रूप है अंततः भगवान का। पंडाम परस्त परमाणु चयांतरस्तु गोविंदम आदि पुरुषोत्तम बोला। तो इस तरह से जब तक उस स्तर पर नहीं आए, भगवान साक्षात्कार स्तर तक नहीं आए, तब तक गाड़ी चलते रहना चाहिए, हम चल रहे चल रहे, अच्छा एक होटल आ गया, रेस्ट रूम आ गया, ठीक है, अभी क्या हो गया ना, वो चला लिया, गाड़ी तो छोड़ के यही रहेंगे, घर बना के नहीं, वन शुड नॉट रेस्ट, till the goal is reached. कब तक? जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो. भगवान इति शब्द थी और इसीलिए वो कहते हैं अंत में तत् शब्द मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन् आत्मविज्ञात्मान भक्त्या श्रुत गृहीतया. जो गंभीर रूप से पूछताछ करने वाले ऐसे विद्यार्थी है या संत है वो ज्ञान और वैराग्य को लेकर परम सत्य की खोज में श्रुति में से जो श्रुत गृहीतया भक्त्या श्रुत गृहीतया और वो जो है उस भक्ति से प्राप्त हो सकता है और वो भक्ति कहां से आती है श्रुत गृहित तत्वदर्शी से श्रवण करके. उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है नहीं. भगवान ने बता दिया तद्विधि प्रणिपा प्रश्न में सेवया उपदीक्षण ज्ञान तत्वदर्शी. तत्वदर्शी से पूछोगे तो वो क्या कहेंगे क्या नाम जाना विश्वासी तत्वता. अगर तत्वता भगवान को जानना चाहते हो तो एक ही तरीका है भक्त्यावान अभिजान क्या शास्त्र तत्व और उनसे जब सुनेंगे जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगे तत्व त्यक्वा देहम पुनर्निर्मितुना तत्वतः तत्वदर्शी के द्वारा जो भक्ति प्रदान करते हैं उसके द्वारा हम तत्व भगवान को जानेंगे और तत्व भगवान को जानेंगे पुनर्जन्म नहीं की भगवान को प्राप्त करेंगे. और ये कहने के बाद अंत में इस प्रश्न है उन्होंने पूछा था एक गौरवतः श्रेय तो उसको कंक्लूडिंग मतलब निष्कर्ष में लाते हुए कहते हैं सुद्ध गोस्वामी सुद्ध गोस्वामी अतः भी द्विज श्रेष्ठ ये द्विज श्रेष्ठ हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जो एकत्रित हुए थे उनका ऋषिगण उनको कहते हैं दिव्य श्रेष्ठ अतः इसलिए कुंभीर हर एक व्यक्ति के लिए वर्णाश्रम विभाग अलग अलग वर्ण अलग अलग आश्रम में तो लोग सब अपना कर्तव्य निभा रहे हो होते हैं स्व अनुष्ठित धर्म से सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हो पर इस पे चीज हमेशा ध्यान रखूंगा संसिद्धि धर्म की परिपूर्णता वो है के हरितोषण हरितोषण मतलब अगर जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं सुबह से शाम तक सोना भी एक कर्तव्य है सोएंगे नहीं तो दूसरे दिन हम फ्रेश नहीं रहे. हरितोषण भगवान को प्रसन्न कर रही थी इसीलिए भगवान कहते हैं यद करोषी यद अश्नासी यद जुहोषी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तद् कूष्मदर्पण मुझे अर्पण करो. और उनको अर्पण करने का मतलब क्या उनको अर्पण करने का मतलब ये सारे कर्तव्यों को ऐसा करेंगे इस तरह से निभाएंगे जिससे वो प्रसन्न हो. खाना तो है पर ऐसे चीज खाएंगे और इतना ही खाएंगे इतनी मात्रा में या इतने ऐसे ही चीज खाएंगे जो उनको प्रसन्न करे. सोना है इतना ही सोएंगे जितना हमको भगवान की सेवा में चुस्त और अलर्ट अलर्ट के बोलते सतर्क और पूर्ण रूप से शक्ति दे पाए और इतना ही कमाएंगे नहीं तो प्रयास अत्याहार प्रयास जरूरत से ज्यादा नहीं जरूरत से कम नहीं. इस तरह से जो भी हम कर रहे हैं लक्ष्य वहां रख के करेंगे हरितोषण भगवान को प्रसन्न कर रहा है भगवान को प्रसन्न कर रहा है. और जो व्यक्ति सारा कर्तव्य सिर्फ भगवान को प्रसन्नता को केंद्र में रखते हुए करता है वो कर्तव्य जो है वो कार्य जो है एकांततः सब व्यक्ति के लिए सभी जीवों के लिए वही भलाई है और श्रेय सबसे श्रेय प्रेयस मतलब इमीडिएट बेनिफिट और श्रेयस मतलब अंततः उसमें फायदा.
तो बोले ये एक चीज बस, हरितोषण संसिद्धिर हरितोषण, सुबह से शाम तक, सोमवार से लेकर रविवार तक, एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और जन्म से लेकर मृत्यु तक, जहां भी जितना बड़ा कैलेंडर ले लो आप। पर अंततः हमको ये सोचना चाहिए, हर क्षण जो भी मैं कर रहा हूं, इज इट एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड, क्या सही में अच्छी चीज है और सही में मेरी भलाई हो सकती है, अंततः भलाई। तो बस एक ही सामने रखना चाहिए, हरितोषण। इसकी जो भी कर्तव्य हम कर रहे हैं उसकी परिपूर्णता यह है कि या क्या भगवान को प्रसन्न हम कर रहे हैं। तो कैसे पता किया जाए, अरे भगवान प्रसन्न, हम तो कर रहे हैं पर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, कैसा पता किया जाए? शास्त्र में बताया है, पर शास्त्र तो बहुत सारी चीज है, डिफरेंट स्लोप्स फॉर डिफरेंट फोक्स। जैसा आप अगर दुकान में जाइए, बुक शॉप में, और बोलिए मेरे को टेक्स्ट बुक दो, बोले टेक्स्ट बुक कौन सा क्लास के वाला, केजी से लेकर पीएचडी तक सब टेक्स्ट बुक है। तो शास्त्र जो है बहुत, भगवान बताते ये नहीं खुश करता है कि मांस खाने वाला महीने में एक बार नहीं खाता तो भी मुझे प्रसन्न होता है। हफ्ते में गुरुवार के दिन निरामिष बहुत अच्छा है कम से कम। और फिर एक जगह बोलते हैं तो एक चींटी को भी तुमने अगर थोड़ा तकलीफ दिया तो तुम पाप नरक में जाओ। यहां से लेकर यहां सब प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग योग्यता के अनुसार अलग अलग श्लोक बताया गया, तो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए शास्त्र साधु जो महान आचार्य हो गए उन लोगों ने क्या किया, शास्त्रों का निष्कर्ष निकाला और सबसे श्रेष्ठ जो योग्यता है भक्ति उसको दिया, उसको कहते हैं आमनाय। आमनाय मतलब शास्त्रों का निचोड़। नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुण सद्धर्म संस्थापक हो, उसमें से भक्ति जो है उतना ही निकाले बस, और सबको निकाल दिया। और कचरा सा ऐसा फनस का फल मिलता है ना, सारा कचरा निकाल के बीज निकाल के मेन चीज जो है उसको खिलाते आपको बस। पर शास्त्र बड़े महान संतों ने, आचार्यों ने भी, षट गोस्वामी इत्यादि ने बहुत सारे ग्रंथ दिए हैं, पर मेरे लिए, मैं कोल्हापुर में इधर रहता हूं और ऐसा काम करता हूं, मेरे लिए कैसा उसको ये सारा शास्त्र कहां अप्लाई किया जाए? तो उसके जो साधुओं के प्रतिनिधि हुए गुरु, गुरु के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि क्या भगवान को प्रसन्न। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादात् न गति कुतो, ये सिंपल। हरितोषणम, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो गुरु तोषण, सदगुरु जो उनके प्रतिनिधि है उनको प्रसन्न करे तो हरितोषण। इस तरह से ये शास्त्र का निचोड़ जान जाएंगे भगवान की इच्छा क्या है और उसके अनुसार हमारा सारा जीवन चलाएंगे हम लोग, तो पूर्ण रूप से हमको विश्वास होना चाहिए कि सबसे ऊंचा कार्य हम कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो परम लक्ष्य जो है हमको प्राप्त करें। शाम को शायद डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत सुंदर है, 6 प्रश्न टोटली पूछा और पूरे 2 अध्याय सिस्टमेटिक है। इतने साल तक मैं पढ़ रहा था पर मुझे नहीं मालूम था कि ये एक एक प्रश्न का खास उत्तर है। के चर्चा हुआ और एक पुस्तक मिला, उसमें से देख रहा एक एक सिस्टमेटिकली एक एक प्रश्न का, 6 प्रश्नों का पूर्ण रूप से उत्तर। शायद शाम को दूसरा प्रश्न और इसका उत्तर चर्चा कर। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई 7वां प्रश्न लेटर।